हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। प्रीति और आयुष्मान तालाब के पास एक घंटे से अधिक समय तक बैठे रहे थे, पर दोनों को समय का एहसास ही नहीं था। इतनी शांत, खूबसूरत, मनमोहक जगह और साथ में ऐसा हमसफर जिसके साथ समय का अंदाज़ा ही नहीं लगता हो, बेहद सुकूनदायक पल थे ये दोनों के लिए। ज़िंदगी की उलझनों से दूर एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिता रहे थे वे। कहने को दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई हुई थी, पर इस खामोशी का भी अपना ही आनंद था। प्रीति आयुष्मान के कंधे पर सिर रखे आंखें बंद किए बैठी हुई थी। आयुष्मान इन लम्हों को दिल खोलकर जी रहा था। दोनों के अधरों पर सौम्य सी मुस्कान सजी हुई थी। लगभग डेढ़ घंटे बाद आयुष्मान ने सिर घुमाकर प्रीति को देखा और उसके चेहरे पर आती लटों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे करते हुए बोला, अगर मन भर गया हो तो चलें, दोपहर होने को है, घूमना भी है अभी और शाम को वक्त से घर भी पहुंचना है। अब मुझे कहीं और नहीं घूमना, यहीं रहना है, प्रीति ने आंखें बंद किए हुए ही कहा और उस पर लिपटी अपनी बाहों की पकड़ मजबूत कर दी। आयुष्मान ने फिर कहा, घूमना नहीं है पर लंच तो करना होगा तुम्हें। लंच का नाम सुनते ही प्रीति एकदम सीधे बैठ गई और उत्सुकता भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोली, लंच नहीं करना, लंगर खाना है मुझे। तो उसके लिए तो गुरुद्वारे जाना होगा ना? हाँ तो चलिए ना, आपको रोका किसने है? प्रीति फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई और आयुष्मान बेचारा उसे देखता ही रह गया। फिर उसने सिर झटका और उठकर खड़ा हो गया। पर तुम्हें तो गुरुद्वारे का रात का नज़ारा देखना है ना, तो एक काम करते हैं, पहले जलियांवाला बाग घूमने चलते हैं, फिर मैं तुम्हें बढ़िया से ढाबे में अच्छा सा लंच करवाऊंगा, उसके बाद बाकी जगह घूमेंगे और शाम को गुरुद्वारा चलेंगे और डिनर वहीं पर करेंगे। आयुष्मान ने अपने कपड़ों को झाड़ते हुए उसे आगे का पूरा प्लान बता दिया। प्रीति ने भी हामी भर दी और दोनों वहां से निकल गए। फिर से प्रीति को इतना चलना पड़ा कि उसका मुंह उतर गया। आखिरकार दोनों बाइक के पास पहुंचे। आयुष्मान के बैठने के बाद प्रीति झट से उसके पीछे बैठ गई और आयुष्मान के कंधों को थाम लिया। आयुष्मान ने मुस्कुराकर बाइक स्टार्ट कर दी। अब प्रीति गिरने से घबरा नहीं रही थी, बल्कि लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाए ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए आसपास के नज़ारों को देख रही थी। आयुष्मान मिरर में प्रीति के खिले हुए चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सफ़र उनके लिए मंजिल से भी ज़्यादा खूबसूरत था, पर सफ़र था तो ख़त्म तो होना ही था। उनका सफ़र भी ख़त्म हुआ और दोनों जलियांवाला बाग पहुंच गए। वैसे जलियांवाला बाग नाम सुनकर आप सबके दिमाग में कुछ बातें आई होंगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत की आज़ादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी, जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेज़ों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। उस बाग की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि एक के ऊपर एक चढ़कर भी लोग वहां से बचकर निकलने में नाकामयाब रहे थे। कुछ लोग अंग्रेज़ों के हाथों से मरना स्वीकार नहीं कर सकते थे और उन्होंने बाग में मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, शहीद हो गए थे। बाकी लोग अंग्रेज़ों द्वारा चलाई गई गोलियों का शिकार हो गए थे। बड़े बूढ़े बच्चे, किसी पर दया नहीं दिखाई गई थी। बस बाग के दरवाज़ों को घेरकर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई थीं वहां मौजूद निहत्थे मासूम लोगों पर। उन गोलियों के अंग्रेज़ों की क्रूरता की निशानी आज भी वहां की दीवारों पर मौजूद है। अब वो बाग पर्यटन स्थल बन चुका है और लोग दूर दूर से उस जगह को देखने आते हैं जहां हमारे देश के लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। वो कुआं भी अब आकर्षण का केंद्र बन चुका है और वो बाग वहां से जुड़ी हर चीज उस हत्याकांड की कहानी बयां करती है जिसकी कल्पना मात्र से हम जैसे आम लोगों की रूह कांप जाती है। प्रीति आयुष्मान के साथ अंदर आई और बाग की खूबसूरती को देखकर जहां उसके लब मुस्कुरा उठे, वहीं वहां की दीवारों पर बने गोलियों के निशानों को देखकर मन उदास हो गया। दर्द सा उठा सीने में और साथ ही गुस्से की लहर सी दौड़ गई खून में कि कोई इतना क्रूर, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। पर अंग्रेज़ों ने तो क्रूरता भी सभी हदों को पार कर दिया था उस रोज़। उस दिन की कल्पना मात्र से उसकी आंखें नम हो गईं और उसने आयुष्मान के हाथ को कस के पकड़ लिया। बाघ घूमते हुए दोनों उस कुएं के पास चले आए। प्रीति ने झांक कर अंदर देखा पर उसकी गहराई की थाह नहीं पा सकी। कैसे वे हिंदुस्तानी इस गहरे कुएं में कूदे होंगे और कितनी दर्दनाक मौतें मिली उन मासूमों को, ये सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी। उसके मन की स्थिति समझते हुए आयुष्मान ने साइड से उसे अपने सीने से लगा लिया। प्रीति भी उसके सीने से लगी रही जैसे ये उसके लिए सबसे महफूज जगह हो जहां कोई दर्द उसे छू भी नहीं सकता। लगभग घंटे भर वे वहां रुके, फिर बाग से बाहर आ गए। प्रीति एकदम उदास सी लग रही थी अब, और आयुष्मान सोच रहा था कि उसका मूड वापस कैसे ठीक किया जाए। प्रीति के साथ वो पास के ही ढाबे में पहुंचा। दोनों एक टेबल पर आमने सामने लगी चेयर पर बैठ गए। प्रीति गुमसुम से बैठी थी, तभी आयुष्मान की आवाज उसके कानों से टकराई। क्या खाओगी? प्रीति ने उसका सवाल सुनकर निगाहें उठाकर उसे देखा और अनमने ढंग से बोली, कुछ भी मंगवा लीजिए। ऐसे कैसे कुछ भी मंगवा लूं? शादी के बाद हम पहली बार कहीं बाहर खाने आए हैं, जो तुम कहोगी वही आएगा।